तारीख 20 जनवरी दिन सोमवार, कार्यक्रम दिन भर के साथ मैं हूं मानसी दास। एनपीआर के विरोध में कई राज्य, लेकिन क्या इसे लागू करने से वो कर सकते हैं इनकार?
अगर नहीं करती हैं लागू तो संविधान का उल्लंघन होगा, लेकिन उसके लिए अलग प्रावधान है संविधान में।
निर्भया बलात्कार मामले में दोषी पवन गुप्ता की अर्जी खारिज, अब आगे क्या है रास्ता?
ये उनके पास एक ही विकल्प और बचा है और वो है मर्सी पिटीशन का, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाके ये फाइल कर सकता है।
वुसत की डायरी में आज बात इंसान और इंसानियत की।
झाड़ू देने वाले परवेज मसीह ने आतंकवादी को रोकने की कोशिश की और हाथापाई शुरू हो गई, आतंकवादी फट गया, 250 लड़कियां बच गईं।
होंगी आपकी चिट्ठियां भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार गुरप्रीत सैनी से। केरल ने कहा है कि वो एनपीआर यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर लागू नहीं करेगा। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूर्वोत्तर के बीजेपी शासित समेत सभी राज्यों से एनपीआर को लेकर विचार करने की अपील की है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अगले 2 साल के लिए वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटा दिया है। IMF के मुताबिक 2020 में वृद्धि दर 3.3% रहेगी, जबकि इसके अगले साल कुछ सुधार के साथ दर 3.44% हो जाएगी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आदेश दिया है कि देश में फैल रहे कोरोना वायरस को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए जाएं। इस बीच बीजिंग में 2 लोग इस वायरस से संक्रमित पाए गए हैं और दक्षिण चीन के शेंजेन में भी 1 मामला सामने आया है। वहीं वुहान में अब तक 200 से ज़्यादा लोग इस वायरस से पीड़ित पाए गए हैं। चीन में कोरोना वायरस से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। चीन के लोगों में इसे लेकर डर का माहौल है।
我是肯定是相信政府，但是还是觉得比较恐惧，因为那个病毒，它是没有药的，它不像那个细菌可以用药来杀死。但是我知道，
मुझे सरकार पर भरोसा है, लेकिन मुझे फिर भी डर लग रहा है, क्योंकि इस वायरस का कोई इलाज नहीं है, कोई दवा नहीं है। अगर आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति अच्छी है तो ही आप इससे बच सकते हैं। ये बहुत डरावना है। ये थे एक चीनी महिला के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। यूक्रेन ने ईरान से मांग की है कि वो इस महीने की शुरुआत में मार गिराए गए यूक्रेनी विमान के फ्लाइट रिकॉर्डर उन्हें सौंप दे, जबकि ईरान ने रविवार को कहा था कि वो पहले खुद ब्लैक बॉक्स की जांच करेगा। ईरान के एक मंत्री बातचीत के लिए यूक्रेन पहुंचे हैं, जो यूक्रेन के विदेश मंत्री से भी मिलेंगे। ईरान ने माना था कि उसने गलती से यूक्रेन के विमान को मार गिराया था। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा,
ми намагаємося пояснити, що згідно домовленості, згідно конвенції про міжнародну цивільну авіацію, країна, в якій відбулася
антирашкий виманен нієм ке тахет іран ко блек бокс дена хі хога, є сирф хамара адикар наї хе, балькі є ус деш ка дайтво бі хе, жахан дурхатна хуї. Блек бокс хамара хе, ор во хаме мілна чахіє. Є те Юкрейн ке видеш мантрі. चीन ने कनाडा से कहा है कि वो टेलीकॉम कंपनी ख्वावे की अधिकारी मैंग वांगजो को रिहा कर दे। मैंग अपने अमेरिका प्रत्यर्पण के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी कर रही हैं। अमेरिका ने मैंग वांगजो पर बैंक से धोखाधड़ी करने और ईरान के खिलाफ लगे प्रतिबंध तोड़ने का आरोप लगाया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कनाडा से अपनी भूल सुधारने और मैंग को रिहा करने के लिए कहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनका देश भविष्य में अफ्रीका की अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभा सकता है। बोरिस जॉनसन एक कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, जिसमें ब्रेक्जिट के बाद ब्रितानी उद्योग के लिए नए बाजार ढूंढने पर चर्चा हो रही थी। इस दौरान वहां अफ्रीका के बड़े नेता और व्यापारी भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि ब्रितानी कंपनियां अफ्रीकी देशों के साथ करीब $60 अरब के समझौते करेंगी। संयुक्त राष्ट्र ने उत्तर पूर्वी नाइजीरिया में अपने एक दफ्तर पर हुए हमले को लेकर हैरानी जताई है। बोर्नो राज्य स्थित इमारत को हथियारबंद चरमपंथियों ने निशाना बनाया। इस इलाके में बोको हराम के चरमपंथी सक्रिय हैं। इराक में सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। बगदाद और दूसरे शहरों में मुख्य सड़कें बंद कर दी गई हैं। माना जा रहा है कि प्रदर्शन और बढ़ सकते हैं, क्योंकि उनकी सरकार को दी गई समय सीमा खत्म हो गई है। BBC समाचार।
BBC हिंदी से दिन भर कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को मानसी दास का अभिवादन। आधे घंटे का ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और bbchindi के फेसबुक पन्ने पर भी लाइव सुन रहे हैं। आज से 31 जनवरी तक कार्यक्रम दिनभर का सीधा प्रसारण आप बीबीसी हिंदी के फेसबुक पन्ने पर भी सुन सकेंगे। केरल राज्य सरकार ने फैसला किया है कि वो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी NPR अपने राज्य में नहीं करेगी और इसके बारे में जनगणना रजिस्ट्रार जनरल को जानकारी देगी। कई राज्यों का मानना है कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन यानी भारतीय नागरिकों की पहचान का पहला पड़ाव है। इधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उत्तर पूर्व के सभी राज्यों से भी ये अपील की है कि वो NPR पर अमल न करें। सुनिए उन्होंने क्या कहा।
And I will request all the opposition state, including BJP state Northeastern, that please see that NPR is a very dangerous game.
ममता बनर्जी कह रही हैं कि विपक्ष की सरकारों वाले सभी राज्यों समेत मैं उत्तर पूर्वी राज्यों से अपील करती हूं कि आप देखें कि NPR एक खतरनाक चीज है। ये सीधे सीधे NRC और नागरिकता संशोधन कानून से जुड़ा है। केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों से मैं अपील करती हूं कि इसे वापस लेने के लिए प्रस्ताव पारित करें। लेकिन क्या राज्य NPR लागू करने से इनकार कर सकते हैं? बीबीसी संवाददाता सरोज सिंह ने संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप से संपर्क किया और उनसे यही जानने की कोशिश की।
ये अधिकार बिल्कुल राज्यों को नहीं है कि उसको इम्प्लीमेंट न करें। अगर वो इम्प्लीमेंट करने से मना करते हैं तो वो असंवैधानिक होगा, संविधान का उल्लंघन होगा।
ये संविधान का उल्लंघन है तो फिर राज्य सरकारें प्रस्ताव पारित करके फिर कोर्ट में क्यों जा रही हैं?
कोर्ट में जाने का अधिकार है उनको और सदन के अंदर अपने विचार रखने का अधिकार है। विचारों की अभिव्यक्ति पर कोई पाबंदी नहीं है और उच्चतम न्यायालय में जाने पर कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी जा सकता है।
तो आखिर क्या इससे हासिल क्या होगा? ये सिर्फ पोस्चरिंग है, राजनीति है, या इससे कुछ हासिल हो सकता है?
आपने ठीक इशारा किया कि इसमें राजनीतिक पोस्चरिंग अधिक है और केवल दलगत राजनीति और सत्ता संघर्ष की राजनीति ज्यादा है, संविधान का इससे लेना देना कुछ है नहीं।
तो मतलब NPR पर भी राज्य सरकारें पीछे नहीं हट सकती, उनको करना ही पड़ेगा?
अगर नहीं करती हैं लागू तो संविधान का उल्लंघन होगा।
अगर उनके पास ये कह के कि हमारे पास उतने मैकेनिज्म नहीं है, लोग नहीं है, पैसा नहीं है, क्या इन सब तरह की अड़चने पैदा कर सकती हैं NPR को करने में?
नहीं, वो भी नहीं कर सकती क्योंकि हम भारत के लोग एक हैं। दुनिया भर में हर का ये अधिकार है वो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बनाए और सेंसस करे, दोनों अधिकार हैं।
ठीक है सर, मतलब तो फेडरल स्ट्रक्चर पे ये किसी भी तरह से आपको नहीं लगता कि कोई आघात हो रहा है? राज्य सरकारें के पास ये राइट ही नहीं है तो राज्य सरकारें इस पे कुछ भी कर लें तो कुछ नहीं मिलने वाला उनको?
बिल्कुल बिल्कुल, वो संविधान का उल्लंघन कर सकती हैं लेकिन उसके लिए फिर अलग प्रावधान है संविधान में। अगर संविधान का उल्लंघन करती हैं तो क्या हो सकता है?
क्या हो सकता है सर, उसमें क्या कॉन्सिक्वेंसेस है?
वो हाइपोथेटिकल है इस स्टेज पर, तो हम ये क्यों माने कि वो उल्लंघन करेंगी, बातें करना और बात है। लेकिन प्रावधान 256 और 257 अनुच्छेद हैं जिसमें केंद्र सरकार डायरेक्टिव्स इशू कर सकती है और अगर डायरेक्टिव्स को न माना जाए तो आर्टिकल 365, 355 और 356 के अंतर्गत कार्रवाई हो सकती है।
तो प्रेसिडेंट रूल है?
वो प्रेसिडेंट रूल भी हो सकता है।
और उसके अलावा
इंटरनल डिस्टर्बेंस के 355 में इंटरनल डिस्टर्बेंस कंट्रोल करने की भी ड्यूटी केंद्र की है, तो उसके अंदर जो आवश्यक समझे हैं वो कार्रवाई कर सकते हैं।
NPR लागू करना राज्यों की बाध्यता या नहीं, विश्लेषण कर रहे थे संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप। देश में नागरिकता कानून को लेकर चल रहे विवाद के बीच भारत सरकार के राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने छत्तीसगढ़ में 50 साल पहले बसाए गए बांग्लादेशी शरणार्थियों को लेकर सवाल उठाए हैं। आयोग ने राज्य सरकार को कहा है कि इन शरणार्थियों के कारण बस्तर के आदिवासियों के सामने संकट खड़ा हो गया है और उनकी जनसंख्या कम होती जा रही है। राज्य के आदिवासी नेता भी शरणार्थियों के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। रायपुर से हमारे सहयोगी आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
लगभग 50 साल पहले बस्तर के इलाके में बसाए गए बांग्लादेशी शरणार्थियों को लेकर समय समय पर सवाल उठते रहे हैं। बस्तर के लगभग 150 गांवों में बसे इन शरणार्थियों के खिलाफ आदिवासी समाज ने कई अवसरों पर विरोध प्रदर्शन कर आरोप लगाया है कि शरणार्थियों के कारण आदिवासियों की आबादी कम हो रही है, रोजगार के साधन कम हो रहे हैं और राजनीतिक रूप से सक्रिय शरणार्थियों के कारण आदिवासी हाशिए पर जा रहे हैं। अब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद कहा है कि इलाके में स्थिति गंभीर है। आयोग के अध्यक्ष नंद कुमार साय कहते हैं,
बांग्लादेशी जो बंगाली हैं, वो भी जनजाति महिलाओं को रख करके उनको सरपंच, उनको बीडीसी क्या क्या सबने खड़ा कर रहे हैं, जंगल काट के उसमें बस जा रहे हैं। इसके कारण अनेक प्रकार की समस्याएं हैं कि लिखित में हमने स्टेट गवर्नमेंट को मीटिंग के माध्यम से दिया है, कहा है कि ये की जांच करें और हमको रिपोर्ट करें।
सर्व आदिवासी समाज के नेता बीपीएस नेताम का आरोप है कि आदिवासियों को उनके गाँवों से भगाया जा रहा है।
आदिवासियों की जनसंख्या कम हो रही है, स्वदेशियों के 134 गांव बसाए हैं, लगभग 5,000 लोगों को बसाया गया था, अब उनकी आबादी 1.5 लाख हो गई है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ आदिवासी नेता अरविंद नेताम का कहना है कि बस्तर के इलाके में शरणार्थियों के कारण विकास की योजनाओं का लाभ भी आदिवासियों को नहीं मिल रहा है।
सबसे दुखद बात है, जमीन चली जा रही है, अपनी बहु बेटियों की इज्जत जा रही है, राजनीतिक अधिकारों पे डकैती हो रही है, ये सारे जो डेवलपमेंट वर्क है उसमें सारा एडवांटेज यही लोग ले रहे हैं और ट्राइबल खड़ा रहता है, देखता रहता है, हमें कुछ नहीं मिल रहा है।
लेकिन छत्तीसगढ़ में बंग शरणार्थी समाज के अध्यक्ष असीम राय का कहना है कि बांग्लादेशी शरणार्थियों के कारण कहीं भी कोई समस्या नहीं है।
नहीं, ये तो झूठ है, क्योंकि सारी लोग मिलके उत्तर भारत में सब कुछ करते हैं, हमारी सामाजिक काम में हम उन्हें बुलाते हैं, उनके सामाजिक काम में हम लोग भी जाते हैं। जहाँ हमारी क्षेत्र में 133 गांव है, मतलब बंगाली लोग ही रहते हैं, यहाँ पूरा शरणार्थी लोग के लिए बसा गया, तो यहाँ तो बंगाली लोग ही ज्यादा है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र के नागरिकता कानून को लेकर पहले ही विरोध जताया है, लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में ही लगभग 50 साल पहले बसाए गए बांग्लादेशी शरणार्थियों के मुद्दे ने अगर जोर पकड़ा तो राज्य सरकार के लिए इससे निपटना आसान नहीं होगा। आलोक पुतुल, बीबीसी छत्तीसगढ़।
दिल्ली की दो अदालतों में आज दो अहम मामलों की सुनवाई हुई। सर्वोच्च न्यायालय में निर्भया बलात्कार मामले के एक दोषी पवन कुमार गुप्ता की स्पेशल लीव पिटीशन को आज खारिज कर दिया। वहीं दिल्ली के साकेत कोर्ट में बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम वाले मामले की भी आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में आज क्या क्या हुआ ये जानने के लिए अब से थोड़ी देर पहले मैंने बात की अदालती मामलों पर नजर रखने वाले हमारे सहयोगी सुचित्र मोहंती से।
पवन कुमार गुप्ता जो कि एक डेथ रो कन्विक्टेड, उसके खिलाफ डेथ वारंट जारी हो चुकी है, उन्होंने ये हवाला अभी दिया है कि ये जो है ना, यानी कि जब ये मामला हुआ था उस टाइम ये नाबालिग था, तो इसलिए मुझे जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत जुवेनाइल के तौर पर ट्राई करना चाहिए, ना कि अडल्ट, क्योंकि तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इसमें कोई दम नहीं है, देयर इज नो फ्रेश मेरिट इन द प्ली, यानी कि इनकी जो फ्रेश प्ली है उनमें कोई दलील नहीं है, इसलिए हम इसको सिरे से खारिज करते हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया है कि अगर पवन गुप्ता चाहे तो और कोई अप्रोप्रिएट फोरम जा सकते हैं, हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर नहीं किया कोई अप्रोप्रिएट फोरम है कहाँ, चाहे दिल्ली हाई कोर्ट या फिर कोई निचली अदालत हो।
पवन कुमार गुप्ता जो हैं, उनके वकील को क्या इस बात का अंदाजा नहीं था कि अगर ये नाबालिग हैं तो ये मामला पहले उठाया जाना चाहिए?
देखिए, जो वकील एपी सिंह है उनसे मैं लगातार संपर्क में रहा हूं, और एपी सिंह का यही कहना है कि उन्होंने ये दलील हाईकोर्ट में दिया था लेकिन हाईकोर्ट ने सिरे से सुना नहीं और सुनने के बगैर ये ऑर्डर जारी कर दिया कि जुवेनाइल है नहीं। ये हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जब आए सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया कि आपने जब खारिज कर दिया उसके बाद हाईकोर्ट का रिव्यू पिटीशन क्यों नहीं फाइल किए, तब इनके पास कोई दलील नहीं थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इनकी कहीं नहीं सुनी, कहा कि ये बहुत देर हो चुकी है मिस्टर सिंह, अब कोई उपाय नहीं है आपके पास।
जी, तो क्या इस मामले में अब ये माना जाए कि पवन की फांसी का जो रास्ता है वो खुल गया है?
ये उनके पास एक ही विकल्प और बचा है और वो है मर्सी पिटीशन फाइल करने का, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाके ये फाइल कर सकता है।
आज दिल्ली के साकेत कोर्ट में भी मुजफ्फरपुर शेल्टर होम वाला मामला था, इस मामले में आज क्या कुछ हुआ?
देखिए, जो साकेत कोर्ट का जो न्यायालय है उसमें मुजफ्फरपुर का जो केस चल रहा था, इसमें 19 अक्यूज को दोषी करार दिया गया, उनमें से ब्रजेश ठाकुर एक अहम प्राइम अक्यूज था, और इनको विभिन्न धाराओं में कन्विक्शन किया गया है। 376 जो कि रेप का होता है, 376 डी होता है गैंग रेप का, 323 होता है वॉलंटियर लीक कजिंग हॉट होता है, और 120 बी क्रिमिनल कंसेस के तहत इनको कन्विक्शन किया है। जनवरी 28 को इनको क्वांटम ऑफ सेंटेंस पर बहस होगी और उसके बाद सजाया होगी। जो ब्रजेश ठाकुर है उनका जो दलील था वो निर्दोष है, इस केस में उनको झूठी तरीके से फंसाया गया है। और आपको मैं ये भी कह दूं कि ये मुजफ्फरपुर का जो शेल्टर होम है इसमें बहुत सारे बच्चे का सेक्सुअल अब्यूज होता, शोषण हुआ था, उसी में इनको दोषी ठहराया गया है।
जानकारी दे रहे थे सुचित्र मोहंती। अब आपको सुनवाते हैं पाकिस्तान से वसीतुल्लाह खान की डायरी, जो आज उनकी बात कर रहे हैं जिनके लिए न राजनीतिक पार्टी बड़ी रही न धर्म, उनके लिए सबसे ऊपर रहा तो इंसानियत का धर्म।
आज मुझे कुछ पागलों की बात करनी है। आयरीन सैंडलर पोलैंड की राजधानी वॉर्सा की नगर पालिका में एक आम सी कर्मचारी थी, वो यहूदी भी नहीं थी। जब हिटलर ने पोलैंड को रौन डाला तो आयरीन ने अपने कुछ हम ख्याल लोगों के साथ मिलकर एक खुफिया नेटवर्क बनाया और जितने यहूदी बच्चों को थैलों में बंद करके या गंदे पानी की बदरुओं के ज़रिए नाजियों की निगाह से बचा के निकाल सकती थी निकाल लिया और उन्हें ऐसे पोलिश ख़ानदानों को दे दिया जो उन्हें छुपा के रख सकते थे। इस तरह से आयरीन ने लगभग 2,500 यहूदी बच्चों की जान बचाई। 2013 में पोलिश पार्लियामेंट ने आयरीन सैंडलर को कौमी हीरोइन करार दिया। इस मौके पर आयरीन ने कहा, हर वो बच्चा जिसे बचाने में मेरा थोड़ा बहुत भी हाथ है इस बात का सबूत है कि इस धरती पर मेरा वजूद बेमकसद नहीं रहा, लेकिन इसमें सीना फुलाने वाली भला क्या बात है, ये तो सभी को करना चाहिए। 2014 में आयरीन 98 वर्ष की उम्र में इत्मीनान से इस संसार से रुखसत हो गई। बिहार के दशरथ मांझी ने जिस तरह पहाड़ काट डाला उस पर तो फिल्म बन चुकी है और इस बारे में सभी को मालूम है। बंगाल के एम्बुलेंस दादा करीमुल हक के बारे में भी अब सभी जानते हैं। उसकी माँ एम्बुलेंस ना होने के कारण अस्पताल ना जा सकी और इसके बाद करीमुल हक की सोच पलट गई। एक टी कंपनी का मामूली कर्मचारी जिसने किस्तों पर मोटरसाइकिल खरीदी अब तक आस पास के 20 गाँव के 6,000 मरीजों को मोटरसाइकिल एम्बुलेंस पे अस्पताल पहुंचा के जान बचा चुका है। हजारों लोगों को फर्स्ट एड दे चुका है। उसका एक बेटा पान बेचता है और दूसरा मोबाइल फोन। मगर करीमुल हक कहता है कि इस तरह का काम पैसे से नहीं दिल से होता है। अक्टूबर 2009 में पाकिस्तानी राजधानी इस्लामाबाद की इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में एक आत्मघातक आतंकवादी ने छात्राओं की कैंटीन में घुसने की कोशिश की। उस वक्त कैंटीन में 200-250 लड़कियां थीं। कैंटीन के बाहर झाड़ू देने वाले परवेज मसीह ने आतंकवादी को रोकने की कोशिश की और हाथापाई शुरू हो गई। आतंकवादी फट गया। 3 छात्राएं और परवेज मसीह शहीद हो गए, मगर 200-250 लड़कियां बच गईं। परवेज मसीह को एक हफ्ते पहले ही यूनिवर्सिटी में 5,000 रुपये पगार पे सफाई कर्मचारी की नौकरी मिली थी। परवेज मसीह का 7 जनों का परिवार एक कमरे के घर में रहता था। परवेज मसीह को क्या पड़ी थी कि जिसकी क्रिश्चियन बिरादरी सबसे निचले समाजी पायदान पर समझी जाती है वो अपनी बिरादरी को हकारत से देखने वालों को बचाते हुए जान दे दे। पिछले हफ्ते पूरा पाकिस्तान खासकर सूबा बलूचिस्तान जबरदस्त बर्फबारी की चपेट में रहा। सैकड़ों गाड़ियां बड़ी बड़ी सड़कों पर फंस गईं। क्वेटा के करीब कुछ लाख के रिहायशी सुलेमान खान को बस ऐसे ही ख्याल आ गया कि फंसे हुए पीड़ितों के लिए कुछ किया जाए। सुलेमान खान ने अपने भाई और एक दोस्त को साथ लिया और अगले 24 घंटे के दौरान 100 से जायद लोगों को बर्फानी नर्क से निकाल के पनाह और खाना दिया, वरना सरकारी मदद आने तक बहुत से नागरिक मर सकते थे। इन सब पागलों में एक बात कॉमन है, इनमें से कोई भी किसी सियासी गुट में नहीं रहा, क्योंकि ये और तरह के पागल हैं, वो और तरह के।
इंसानियत है तभी तो इंसान है। ये थी पाकिस्तान से वुसत की डायरी और अब वक्त है आपकी चिट्ठियां पढ़ने का।
आपकी राय। नमस्कार, आपकी चिट्ठियों के साथ आज मैं हूं राजेश प्रियदर्शी। मैं आपकी चिट्ठियां पढ़ूंगा। आपके प्रश्नों के उत्तर देने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि उत्तर तो आप जानते ही हैं, और एक वजह ये भी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चिट्ठियों को शामिल करना चाहते हैं, आपकी आवाज़ सुनाना चाहते हैं, आपकी आवाज़ लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। ये एक तीन पोस्ट कार्ड हैं मेरे सामने और ये तीनों लिखे गए हैं मध्य प्रदेश के श्योपुर से और इन्हें लिखने वाले हैं दिलेर सिंह पंजाबी, मान सिंह और सरदार सिंह। और ये लिखते हैं, ये तीनों लोग एक ही बात लिखते हैं कि कार्यक्रम बहुत समय से ये सुनते रहे हैं, इनको बहुत अच्छा लगता है और इनको बहुत अफसोस है कि शॉर्टवेव रेडियो बंद हो रहा है। इन्होंने आग्रह किया है कि कृपया ऐसा न करें। उनका कहना है कि शॉर्टवेव रेडियो के बिना हमें दूर दराज के इलाकों में सच्चाई का पता नहीं चल सकेगा। ये तीनों पत्र हमें श्योपुर से मिले, मध्य प्रदेश से। वीर सिंह चौहान का एक पोस्ट कार्ड है जो महेंद्रगढ़ हरियाणा से आया है। इनका कहना है कि मैं 1977 से बीबीसी हिंदी के कार्यक्रम सुन रहा हूं, कार्यक्रम सुनने की आदत सी हो गई है, जब से कार्यक्रम बंद होने के बारे में सुना है बहुत दुख हो रहा है, कृपया कार्यक्रम बंद न करें और आधे घंटे की कम से कम एक सभा जारी रखें। ये पत्र हमें भेजा वीर सिंह चौहान ने महेंद्रगढ़ हरियाणा से। एक और पोस्ट कार्ड है जो आया है गोंडा उत्तर प्रदेश से और इसको लिखने वाले हैं राजबली यादव। राजबली यादव का ये कहना है कि बीबीसी का 3.5 दशक पुराना श्रोता हूँ, किंतु मुकेश शर्मा जी ने जब ये घोषणा की कि कार्यक्रम बंद किया जा रहा है तो मुझे लगा जैसे वज्रपात हो गया, ऐसा लगा जैसे मेरे ऊपर बिजली गिरी। निष्पक्ष विश्लेषण से और ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों से हमें इस तरह वंचित न करें। ये पत्र भेजा था गोंडा उत्तर प्रदेश से राजबली यादव ने। कमलेश कुमार साहू की एक चिट्ठी है जो काफ़ी लंबी है, इसमें इन्होंने कई लोगों के नाम लिए हैं और इन्होंने कहा है कि ओंकार नाथ श्रीवास्तव, रत्नाकर भारतीय, शफी नकी जामी, कैलाश बुधवार, ममता गुप्ता, अचला शर्मा, परवेज आलम, कृष्णकांत टंडन और इसी तरह से इन्होंने कई रिपोर्टरों के भी नाम लिखे हैं, मणिकांत ठाकुर, रामदत्त त्रिपाठी, सुबीर भौमिक, संदीप साहू, इमरान कुरैशी और रेहान फजल। इनको बहुत सारे लोगों के नाम याद हैं और इनको लगता है कि रेडियो का बंद होना एक अतुलनीय और अपूर्णीय क्षति है और वो अनुरोध कर रहे हैं कि हम इस फैसले पर पुनर्विचार करें। कमलेश कुमार साहू, ग्राम हरवी, जिला जांजगीर, छत्तीसगढ़ से उन्होंने ये पत्र हमें भेजा है। एक पोस्ट कार्ड और है मेरे सामने जो कि हमारे एक और पुराने श्रोता का है और ये कई लोग हैं जो छत्तीसगढ़ में भाटा से हमारे कार्यक्रम सुनते हैं, ग्राम पोस्ट कोयदा से, और इनके नाम हैं अरुण साहू, संदीप साहू, सर्वेश साहू, दुर्गेश साहू और लोकेश साहू। और इनका भी यही कहना है कि कार्यक्रम को बंद न करें, कार्यक्रम को चलाए रखें, हम इस कार्यक्रम को चलाए रखने के लिए आपसे अनुरोध करते हैं। और इन्होंने साथ में ये कहा है कि इस कार्यक्रम की बहुत ज़रूरत है क्योंकि ये ग्रामीण भारत की जान है। बहुत सुंदर लिखावट में पत्र भेजा है श्याम बहादुर सिंह ने, औद्योगिक क्षेत्र भिलाई छत्तीसगढ़ से, और ये कहते हैं कि ओंकार नाथ श्रीवास्तव द्वारा अमीन सयानी पर प्रस्तुत कार्यक्रम सुनकर पुरानी यादें जैसे ताज़ा हो गईं। 40 साल पुराने इस श्रोता ने पहले भी ओंकार जी का एक पूरा कार्यक्रम सुना था। मोहन राकेश और जगजीत सिंह पर रेहान फजल के कार्यक्रम मन को छू गए। अब क्या लिखूं, भूली बिसरी यादों के सहारे ही रहना है। पूरे विश्व में सबसे अधिक बीबीसी के श्रोता हिंदी सेवा के ही हैं, फिर भी इसे बंद किया जा रहा है। श्रोताओं की इच्छाओं का दमन हो रहा है पर हम विवश हैं। मेरी यही अभिलाषा है कि एक बार टेलीफोन पर आप लोगों से बात हो जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। उन्होंने अपना मोबाइल नंबर भी भेजा है। ये श्याम बहादुर सिंह हैं भिलाई छत्तीसगढ़ से। ये पत्र आया है हमारे पास ग्रामोफोन क्लब रामपुर से और इसे भेजा है राशिद शमसी साहब ने। पीछे इस पर एक मुहर लगी हुई है और इन्होंने एक सुझाव दिया है। इनका सुझाव ये है कि बीबीसी रेडियो पर आप एक ऐलान करें कि इतने सारे पत्र आ गए हैं इसलिए आप प्रसारण बंद नहीं करेंगे, आपका स्तर गिरा नहीं है, बीबीसी सुनने वाले बहुत लोग हैं, अगर आप कहें तो हम आपको और पत्र लिख सकते हैं, हम कहीं और अपील कर सकते हैं, हम किसी अदालत में जा सकते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम जो भी हो सकता है करें लेकिन ये प्रसारण बीबीसी बंद ना करे। तो ये कुछ पत्र थे मेरे सामने, और भी कई पत्र हैं जिनको समय की कमी की वजह से मैं आज नहीं पढ़ पा रहा हूँ। मैं श्रोताओं से विदा चाहता हूँ। हमारा पता आपके पास है ही, बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003। और अगर आप हमें ईमेल भेजना चाहें तो हमारा पता है hindi.letters@bbc.co.uk। मुझे राजेश प्रियदर्शी को अनुमति दीजिए, नमस्कार।
दिन भर कार्यक्रम अब समापन की ओर है। अब तक हम आपको बीबीसी के खजाने से पुराने प्रस्तोताओं के खास कार्यक्रमों और कार्यक्रमों की सीरीज की झलकियां सुनवा रहे थे। आज से हम आपको बीबीसी के पुराने और जाने माने संवाददाताओं के अनुभव भी सुनवाएंगे। इसकी पहली कड़ी में आज सुनिए मणिकांत ठाकुर के अनुभव, उन्हीं की आवाज में।
नमस्कार, आज कुछ अपनी बातें आपसे साझा करना चाहता हूँ। मेरी पत्रकारिता का सबसे अहम हिस्सा यही है कि बीबीसी हिंदी सेवा से मेरा रिश्ता लगभग 18 वर्षों तक नियमित रूप से बना रहा। उस दौरान कई ऐसे मौके आए जब अपने श्रोताओं के बीच पहुंचकर उनसे सीधे संवाद के जरिए ये जान पाया कि बीबीसी से उनके गहरे लगाव की बुनियाद क्या है। खबरों की प्रस्तुति में भाषागत सहजता, अदायगी में आकर्षण और तथ्यों की विश्वसनीयता कितना असर डाल सकती है, इसका अंदाजा मुझे था। और अंदाजा इसलिए था क्योंकि उस समय बीबीसी हिंदी से जुड़े लंदन और दिल्ली के प्रसारकों की असरदार प्रस्तुति में ये सारे गुण हुआ करते थे। उन्हीं से बहुत कुछ सीखा मैंने। फिर थोड़ी अपनी कल्पना शक्ति और खास नजरिए का सदुपयोग करके जन पक्षधर यानी प्रो पीपल पत्रकारिता को मैंने अपना मूल मंत्र मान लिया। इसका फायदा यह हुआ कि जब कभी बिहार के सुदूर इलाकों में भी अपने श्रोताओं से मिला तो उनकी जुबान पर बीबीसी के साथ मणिकांत ठाकुर नाम को भी जुड़ा हुआ पाया। यही तो रही है मेरी बहुमूल्य पूंजी। याद आते हैं वे दिन जब रिपोर्टिंग के सिलसिले में राज्य के विभिन्न हिस्सों में घूमते हुए लोगों को ये कहते सुना करता था कि बीबीसी ने कहा है तो सच ही होगा। बिहार में ऐसे श्रोताओं की भारी तादाद ने भी मेरा उत्साह बढ़ाया। और सिर्फ राजनीति ही नहीं, जीवन के विविध रंगों से जुड़े विषयों को भी मैंने अपनी पत्रकारिता में शामिल रखा। उस समय बीबीसी हिंदी सेवा में संवाद संकलन के अलग अंदाज की काफी गुंजाइश भी थी। एक बार सहरसा की जनसभा में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भाषण कर रहे थे। उसकी रिकॉर्डिंग करते समय ही मैंने वहां भाषण सुन रहे लोगों की प्रतिक्रियाएं भी साथ साथ रिकॉर्ड करके दोनों को एक साथ लाइव रिपोर्ट जैसी शक्ल दे दी। इसी तरह एक बार चुनाव के समय बिहार के औरंगाबाद शहर में चौराहे पर जमा लोगों के चुनावी वाक युद्ध के बीच चुपचाप माइक घुसाकर जो कुछ मैंने रिकॉर्ड किया उसी में सबसे रोचक 3 मिनट के टुकड़े को सिर्फ इंट्रो यानी क्यू लगाकर भेज दिया था। झगड़े के उस 3 मिनट में वहां संभावित चुनावी नतीजे की तस्वीर उभर आई थी। मुझे याद है कि इन दोनों तरीकों या प्रयोगों को बीबीसी हिंदी के माहिर प्रस्तोता प्रसारक शिवकांत ने और अचला जी ने भी जीवंत रेडियो पत्रकारिता कहके मेरा हौसला बढ़ाया था। वैसे आज इस मौके पर मुझे विष्णु शंकर याद आ रहे हैं जो मेरे बीबीसी से जुड़ने की पहली कड़ी बने थे। तो अंत में आप सबके लिए शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर कह लें, मणिकांत ठाकुर, बीबीसी पटना।
और अब कार्यक्रम में आपसे विदा लें, उससे पहले मुख्य समाचार एक बार फिर गुरप्रीत सैनी से।
बीबीसी समाचार। केरल ने कहा है कि एनपीआर यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर लागू नहीं करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अगले 2 साल के लिए वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटा दिया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आदेश दिया है कि देश में फैल रहे कोरोना वायरस को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए जाएं। यूक्रेन ने ईरान से मांग की है कि वो इस महीने की शुरुआत में मार गिराए गए यूक्रेनी विमान के फ्लाइट रिकॉर्डर उन्हें सौंप दे। चीन ने कनाडा से कहा है कि वो टेलीकॉम कंपनी ख्वावे की अधिकारी मैंग वांगजो को रिहा कर दे। संयुक्त राष्ट्र ने उत्तर पूर्वी नाइजीरिया में अपने एक दफ्तर पर हुए हमले को लेकर हैरानी जताई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनका देश भविष्य में अफ्रीका की अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभा सकता है। इराक में सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। बगदाद और दूसरे शहरों में मुख्य सड़कें बंद कर दी गई हैं। माना जा रहा है कि प्रदर्शन और बढ़ सकते हैं। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। आज स्टूडियो संभाला रविशंकर ने। अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम 7:30 बजे। तब तक देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए bbchindi.com के साथ। फिलहाल मानसी दास समेत पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।